HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन।
हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम शरत है और आपका दिल से स्वागत करता हूं बाउंस बैक भारत के सेकंड सीजन में। और इस बार का पॉडकास्ट पिछले पॉडकास्ट से भी कमाल है। देखिए, इस कोविड ने हम सबको एक ऐसे सिचुएशन में डाला, एक ऐसी स्थिति में डाला जहां से हम सब बाउंस बैक करना चाहते हैं और धीरे धीरे कर भी रहे हैं। लेकिन जो हमारी जर्नी है वो इतनी आसान नहीं होने वाली। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हिंदुस्तान के सबसे बड़े दिग्गजों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए। सो वी क्रिएटेड द बिगेस्ट कॉन्फ्लुएंस ऑफ सेलिब्रिटीज, OTT स्टार्स, स्पोर्ट्समैन, बिजनेस लीडर्स। इंडिया का हर बड़ा आइकन इस प्लेटफॉर्म पे आ गया है एंड दे आर टेलिंग अस हाउ दे बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी। है ना इंटरेस्टिंग? तो शुरू करें सिलसिला बाउंस बैक भारत का। बाउंस बैक
भारत। तो कुणाल, वेलकम टू द बाउंस बैक भारत फेस्ट। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ बाउंस बैक भारत फेस्ट। It's an honor to have you on this platform.
Thank you for having me, Sharad. Really excited to be here.
So, thoda main bata deta hu what Bounce Back Bharat Fest is. What we are trying to build is a confluence of Indians from across the globe. And as the economy opens up and as we are now bouncing back, we said that why not do it along with millions of Indians and share notes, brainstorm, learn from each other. So, humne apne listeners se kaha ki is Bounce Back mein aap kin के साथ इंटरेक्ट करना चाहोगे, किन की स्टोरीज चाहोगे। सेलिब्रिटीज का हमने नाम लिया, स्पोर्ट्समैन का नाम लिया, बिजनेस लीडर्स का नाम लिया, तो आपका नाम बहुत प्रोमिनेंटली आया। योर स्टोरी इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ इंडियंस। तो राहुल भाई के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट की एंड यू एग्रीड, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
So I'm really excited to be here and thank you for all the kind words that you said. So really excited to have this conversation.
तो शुरुआत करते हैं आपके अर्ली डेज। पेरेंट्स वांटेड यू टू जॉइन IIT, लेकिन कहानी में कुछ और ही ट्विस्ट आ गया तो उसके बारे में बताइए।
या सो आई थिंक एक्चुअली जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए डिसाइड करते थे उस समय। अब तो थोड़ा टाइम बदल गया है। मेरे अब छोटे छोटे बच्चे हैं। I can't even decide what my 6-year-old wears or eats or where does she want to go. I don't get to decide anything for her. She makes up her own mind. I think we grew up in a slightly different era. पर मेरे को एक चीज और realize हुई थी उस experience में कि actually मेरा हमेशा मन तो था कि कुछ मैं business oriented करूँ from जब से मैं छोटा था। तो चाहे मेरे नंबर ठीक आते थे स्कूल में, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई डिडंट स्टडी अ लॉट बट आई गॉट डिसेंट मार्क्स एक्सेट्रा। इट वॉज नेचुरल कि मैं IIT जाऊंगा क्योंकि मेरे बड़े भाई भी IIT गए थे। सो वो होता है ना कि छोटे वाला वही करे जो बड़े वाले नहीं किया। लेकिन मेरे को लगता है इन हाइंडसाइट माई हार्ट वॉज नॉट इन इट, राइट? एंड इवन दो आई वॉज गुड एट स्टडीज, आई फील my heart was not in going for a pure engineering degree. कभी-कभी क्या होता है कि जब आप दिल से आप कुछ चीज चाहते नहीं है, वो कभी like circumstances ऐसे बन जाते हैं कि आपको जिंदगी किसी और डायरेक्शन में ही ले जाती है, शायद जिस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए था। एंड कुछ ऐसे ही हुआ मेरे साथ कि IIT में मेरा एडमिशन हुआ नहीं, लेकिन एंड एट द एज ऑफ 17 जब इतना बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है, सबको आसपास लगता है कि आपका तो हो ही जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है। अब सबसे ज्यादा शॉक लगता है सबको कि अच्छा आप एडमिशन ही नहीं हुआ, अब क्या करोगे, राइट? अब कॉलेज घर बैठोगे आप? सो इट्स दिस फॉल फ्रॉम ग्रेस दैट यू एक्सपीरियंस एंड इन आवर सोसाइटी failure is seen as a bad word. Failure is seen like ki you can never escape it. Once you have failed, you can never not come out of it. So I think, but I had a lot of support from my family at that point in time. They said ki dekho aapko fir se IIT ka exam dena, aap de do. But agar aapko lag raha hai ki aap, your heart is not in it anymore, you want to do something else altogether, we'll support you. You do that. And I'm very thankful to my parents and my family, that they, immediate family, they really supported me at that time. As a 17-year-old, aap bahut impressionable hote.
Bilkul.
Aur, and aapko pata nahi hota ki setback ko kaise jhelna hai, like how to overcome it. तब तक क्या होता है, चलो एक एग्जाम में नंबर कम आ गए, टेस्ट में नंबर कम आ गए, कोई कंपटीशन में आप सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, रैंक नहीं आया. दिस इज लाइक अ वेरी पब्लिक फेलियर. दिस इज द बिगेस्ट फेलियर एज अ 17 ईयर ओल्ड यू कैन एक्सपीरियंस. इन हाइंडसाइट मे बी इट डजंट मेक, डजंट मैटर, बट उस समय बहुत बड़ी चीज होती है.
एंड देन अगला ट्विस्ट आता है, आप अमेरिका चले जाते हैं और फिर जो ख्वाब देखे होते हैं वो भी एकदम से गायब हो जाते हैं, उसके बारे में बताइए भाई.
हाँ शरद, मैं आपको क्या बताऊं, मैं व्हेन आई लुक बैक ओवर द लास्ट 20 इयर्स ऑफ माय लाइफ, अ लॉट ऑफ पीपल आई मीट, दे से ओ कुणाल, यू हैड सच एन इनक्रेडिबल जर्नी, एंड आई टेल देम, या आई फील सो ब्लेस्ड, बट व्हेन आई लुक बैक I actually only remember the times when I fell, when I failed, right? I actually don't remember the times when I had a great outcome or great success, because the moment that happens, you're already thinking about what next. Mm-hmm. But I vividly always remember ki jab jab cheeze theek nahi gayi thi, jab main gira, jab mera plan work nahi kiya, वो चीजें मेरे को काफी क्रिस्टल क्लियर
हुआ
याद है. तो हुआ ये कि मैं कॉलेज आईआईटी में नहीं हुआ, मैं यूएस के कॉलेज की तैयारी की और मेरा हो गया वहां पे, और जिस कॉलेज में मैं जानना चाहता था उसी कॉलेज में मैंने अप्लाई किया और उस कॉलेज में एडमिशन हो गया. एक कॉलेज में अप्लाई किया और उसी में ही हो गया. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक गॉड हैड अ प्लान कि आपका आईआईटी में नहीं होना था, आपका इस कॉलेज में होना था, क्योंकि आपको इसमें ही जाना था. और फिर उसके बाद मैं कॉलेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट में मेरी जॉब लगी थी यूएस में. आई वर्क देयर फॉर अबाउट 10-11 मंथ्स, देन दे अप्लाइड फॉर माय वीजा टू स्टे ऑन इन द यूएस टू वर्क विद देम. और वो मेरे को याद है, एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था अपने सिएटल में, और एक लाइन की ईमेल आई मेरे को एकदम से, योर H-1B वीजा एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, प्लीज कॉन्टैक्ट योर मैनेजर फॉर नेक्स्ट स्टेप्स. तो मेरे को इसका क्या करें अब, तो मैं नेक्स्ट स्टेप्स के लिए गया अपने मैनेजर के पास, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, कहा कि मैं क्या करूँ, ये तो गवर्नमेंट का डिसीशन है, इट्स अ लॉटरी सिस्टम, वन आउट ऑफ टू, वन आउट ऑफ थ्री पीपल गेट अ वीजा. सो आई प्रीटी मच हैड टू लीव द US सडनली बिकॉज माई वीजा वॉज नॉट गेटिंग ग्रांटेड टू मी. तो उस समय वो भी बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि मैं तो दिमाग में बहुत सारे प्लान बना रखा था कि अभी मैं 2 साल माइक्रोसॉफ्ट में काम करूंगा, फिर मैं सैन फ्रांसिस्को जाऊंगा, वहाँ स्टार्टअप ज्वाइन करूंगा या स्टार्टअप शुरू करूंगा. तो मैं तो दिमाग में बहुत सारे प्लान बना लिए थे. एकदम से सब कुछ, जैसे होता है ना, वो यू हिट अ ट्रेन, यू हिट अ वॉल, इट्स लाइक अ ट्रेन रैक, जस्ट द लाइफ केम टू अ सडन स्टैंड स्टिल. एंड बट देन यू नो it worked out, it was, that was also a blessing in disguise.
ye kamal hai Kunal, matlab dekho kaise adversities ka, kuch adversities dikhti kuch hai lekin unke andar kuch aur chupa raha aapki zindagi mein, ki yahan se kuch aur hi cheez banni thi. Aur us waqt main bas us moment ko aap, main chahta hu ki aap thoda revisit karo, kyunki bahut sare log jo ye video broadcast sun rahe honge wo shayad इस वक्त इसी सिचुएशन में होंगे. कईयों की जॉब कट्स हो गई होंगी, जॉब प्रोफाइल्स चेंज हो गई होंगी, कईयों ने जॉब्स खोए भी होंगे, अपनों खोए होंगे, एडवर्सिटी की उस सिचुएशन में खड़े. उस वक्त जब आपके साथ ये हुआ कि अमेरिका पहुंच गया, अब अमेरिका से डिपोर्ट करने वाली हालत हो गई, तो मन में क्या गुजर रहा था, एंड वो बाउंसिंग बैक में 2-3 क्या वो चीजें, ट्रेट्स आपको लगता है जिसकी वजह से आप वो कर पाए?
आई थिंक एक, मेरे को लगता है मेरे में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कि जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है, मैं बहुत जल्दी आई मूव ऑन फ्रॉम इट, राइट? मैं बहुत समय नहीं लगाता उसको, उसके बारे में सोचने में कि ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ. सडनली आई जस्ट स्विच ऑफ फ्रॉम व्हाट हैपेंड एंड आई एम 100% स्विच्ड ऑन फॉर ऑन व्हाट टू डू. एंड मे बी दैट्स व्हाई आई एम एबल टू मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट, राइट, फ्रॉम एनी एडवर्सिटी. बट आई हैव ऑलवेज सीन कि मुझे याद है जब मेरा IIT में नहीं हुआ था, उस दिन वो ऑनलाइन रिजल्ट में आया था नो रैंक, राइट, और सब के मूड ऑफ थे घर में. मैं तो जाके क्रिकेट खेल के आया 5 घंटे उसके.
अच्छा,
राइट. फिर जैसे मेरा H1B वीजा नहीं हुआ, उसी रात मैंने रोहित, जो मेरा पार्टनर है, माय गुड फ्रेंड विद हुम आई स्टार्टेड स्नैपडील, आई कॉल्ड हिम अप, सेड रोहित मैं आ रहा हूँ वापस कुछ शुरू करते.
रोहित तब इंडिया में थे.
हाँ, रोहित मैं वापस आ रहा हूँ कुछ शुरू करते.
और फिर रोहित के साथ आई एम गिवन टू बिलीव रिपब्लिक डे के दिन 8 घंटे की ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद कुछ हुआ, उसके बारे में बताइए.
So, हम लोग बैठे हुए थे ऐसे दो तीन, इट हैड बीन टू एंड हाफ इयर्स सिंस वी हैड स्टार्टेड आवर कंपनी, बट अब स्नैपडील नहीं शुरू हुआ था. हम कुछ ऑफलाइन कूपन बुक बेच रहे थे, इट वाजंट रियली गोइंग एनीवेयर टू अ सक्सेसफुल डेस्टिनेशन. बट एक दिन फिर मैं और रोहित रिपब्लिक डे, ये दिल्ली में जो राजा गार्डन है वहाँ मॉल है 3-4, वहाँ पे कॉस्टा कॉफी में हम बैठे हुए थे और हम सोचने लगे कि यार ये जो हम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इससे बड़ा बिजनेस बनता दिख नहीं रहा. तो अभी ये इंटरनेट वगैरह थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे, तब इंडिया में अब जैसे 1 बिलियन इंटरनेट यूजर है, 2010 में 10 मिलियन इंटरनेट यूजर थे. तो बहुत छोटी मार्केट थी. हमें लगा कि ये, पर ये बढ़ेगा तो सही, देयर इज नो डाउट, राइट, व्हेन वी सॉ व्हाट वाज गोइंग ऑन इन डेवलप्ड मार्केट्स लाइक द US, बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनियां बन रही थी. तो हमने उस दिन बैठ के डिसाइड कर लिया कि जो हम काम कर रहे हैं, ये कूपन बुक वगैरह बेच रहे हैं, यही चीज़ अब ऑनलाइन करते हैं. और लिटरली तभी हमने बैठ के स्नैपडील का नाम भी सोच लिया, उसी कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए डोमेन नेम भी बुक कर ली और 8 दिन में लॉन्च भी कर दिया. इतनी बिल्कुल गंदी वेबसाइट थी, आधे ट्रांजैक्शन जाते ही नहीं थे, फेल हो जाते थे, लेकिन शुरू कर लिया. क्योंकि बहुत बारी क्या होता है लाइफ में, चीज़ शुरू करनी बड़ी ज़रूरी होती है. बहुत बारी लोग बस सोचते रहते हैं कि इसको और कैसे परफेक्ट करें और प्लान कैसे बेटर बनाएं. ठीक है, सम प्लान इज इम्पॉर्टेंट, कुछ तो प्लान जरूरी है, बट जब तक करना नहीं शुरू करोगे ना, तब तक आपको प्रॉब्लम्स दिखते रहेंगे. पर समटाइम्स जो प्रॉब्लम आप थ्योरेटिकली सोचते हैं वो प्रैक्टिकली होते नहीं है, और जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम होते हैं वो आप थ्योरेटिकली सोच नहीं पाते.
क्या बात.
इससे अच्छा कि करना शुरू कर दो और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पता चल जाएगी, फिर आप सॉल्व करते रहो. सो ऐसे हुई थी स्नैपडील की शुरुआत, एक over a cup of coffee that Rohit and I had at Costa Coffee in 2010.
क्या बात है, 2010. और उसके बाद तो of course snack deal took off. लेकिन again ऊपर वाले ने आपकी कुंडली में twist तो डाल नहीं थे, तो फिर एक और twist. When you were doing well, there came a time in your journey, and I was doing a research. जहां पे आपको सडनली ये रियलाइज हुआ कि 5 लाख सैलरी देनी है और 53,000 रुपीस है. तो वो क्या मोमेंट था, कहां तक पहुंच चुके थे और ये क्या वो इंसिडेंट था?
हाँ, मतलब बहुत बार ही क्या होता है जब आप कुछ चला, फाउंडर हो, कंपनी चला रहे हो, स्टार्टअप चला रहे हो, आपका ये रहता है कि बस हम आगे बढ़ते रहे, राइट. हमारे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि हम फेल होंगे कभी. Right, failure was never an option. We would always want to figure out a way to make things work. And वो एक अपने आप को ना वो psychologically आपको train करना बड़ा जरूरी है. थोड़ी वो mental strength बनानी बहुत जरूरी है कि यार failure is not an option. We will always find a way out, even if however bad the situation may be. तो जब हमारे पास थोड़े से पैसे रह गए थे, सारे जितने हमारी 1 साल की कमाई थी, रोहित और मैंने जो भी जॉब किया था सारे हम लगा चुके थे, शायद थोड़े से वी हैड लाइक मे बी 5 लाख रुपीज लेफ्ट इन आर बैंक अकाउंट्स एंड वी हैड टू पे 5 लाख ऑफ सैलरीज टू आर एम्प्लॉयज. तो उस समय वी जस्ट रोट पर्सनल चेक्स टू ऑल आर एम्प्लॉयज फॉर दैट मंथ, एंड रोहित एंड आई थिंक वी लेफ्ट विद सम लाइक 30-40,000 रुपीज इन आर बैंक अकाउंट. क्यूमुलेटिवली, तो मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा था। और उस समय ना हमारे दिमाग में ये कभी नहीं होता था कि अच्छा अगर हमने ये कर दिया और फिर भी नहीं चली, फिर तो हम बिल्कुल मतलब लाल हो गए ना। मतलब एक तरफ वी हैव जीरो मनी प्लस वी डोंट हैव अ बिजनेस।
और ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि अक्सर कई बार ना हम इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमें फियर ऑफ फेलियर रोक देता है। लेकिन आपके केस में ये ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग एल्स दैट वाज ड्राइविंग, वो फियर, वो चीजें शायद दिखती नहीं थी, वो क्या क्या था भाई?
आई थिंक वो एक अंदर की जो एक आवाज है ना कि कुछ बड़ा करना है, सो देन दैट गिव्स यू दैट पुश, लाइक नॉट सेटलिंग फॉर लेस, नॉट सेटलिंग फॉर मीडियोक्रिटी, नॉट सेटलिंग फॉर फेलियर, that pushes you ki yaar if there is something more I can do right now to keep this journey going, I must do it.
फिर जब चीजें ठीक ठाक चलने लगी, 70% market share हो गया, आपकी websites working well, you were in a certain position of strength, 2011 में चाइना का एक ट्रिप पे आप निकलते हैं, बेचारे employees ने सोचा सब all is well, You go to China, you come back, and they are in for a surprise. क्या था भाई वो surprise?
हाँ, तो हम चाइना गए 2011 में, हमने realize किया कि हम लोग उस समय Snapdeal पे ना coupon बेच रहे थे कि restaurant, spa, salon पे आपको 20% 50% off. हम चाइना जब गए तो हमने देखा कि असली जो गेम है, असली मार्केट जो है वो है फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचने की, लोगों के घर प्रोडक्ट्स पहुँचाने की, नॉट जस्ट सेलिंग coupons of restaurants or spas. तो while हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था कूपन वाला, हमें ये लगने लग गया था 2011 के एंड तक कि ये बहुत बड़ा बिजनेस शायद नहीं बनेगा, एंड इट विल नेवर बी लार्ज इनफ टू मीट आवर ओन पर्सनल एम्बिशंस एज फाउंडर्स, एज एंटरप्रेन्योर्स। सो वी केम बैक और एक ही महीने में हमने वो प्रैक्टिकली ओवरनाइट हमने बिजनेस को बिल्कुल चेंज कर दिया। सब लोग बहुत हैरान थे कि क्यों कर रहे हो ये, अच्छा तो चल रहा है, क्यों चेंज कर रहे हो बिजनेस मॉडल? पर हमें ये लगा कि See, every founder, every entrepreneur, every small business owner knows the risks in his or her business better than anyone else. वो शायद आपको बताए ना, पर उनको अपने दिल में पता है कि उनके business में risk क्या है। तो बहुत risky move था उस समय पर, and हमारे बहुत सारे shareholders, board members भी काफ़ी हैरान थे कि ये इतना drastic move क्यों कर रहे हैं। And it was hard to find support, but we found support in our employees. Our employees said, "Karna chahiye hame." Thoda sa, it's there is a risk, risk of giving up what is already working and going towards something jahan pe uncertainty hai ki pata nahi hum kar bhi payenge ya nahi. Par kya hota hai na wahan pe Sharad ki jab thoda sa aap naive hote ho, jab aapko samajh nahi hoti ki sari problems kya hongi, wo kabhi kabhi acha bhi hota hai.
अब आते हैं जो लेटेस्ट ट्विस्ट जिसके बारे में हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने और व्यूअर्स ने पूछा, इस जब फ्लिपकार्ट ने बिड किया स्नैपडील के लिए एंड खबरें आ गई कि स्नैपडील इज नाउ सोल्ड टू फ्लिपकार्ट, फिर एक ट्विस्ट आया एंड यू नो स्नैपडील बाउंस बैक एंड नाउ इज बैक इन द बिग गेम, तो वो क्या था भाई एंड उसके पीछे क्या कहानी थी?
वो शायद जब 40 साल बाद मैं किताब लिखूंगा तो उसमें लिखूंगा, मे बी वाइल इट्स नाउ बीन अ फ्यू इयर्स। लेट्स सी, आई थिंक किसी भी फाउंडर की जर्नी में, जैसे हमारी जर्नी में अभी तक भी कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, वो भी एक ट्विस्ट और टर्न था। और कभी कभी क्या होता है कि आपको खुद ही नहीं समझ आता कि आप किसी सिचुएशन में कैसे पहुंच गए। वो जब पहुंच जाते हैं आप उस सिचुएशन में, फिर आप थोड़ा रिवाइंड करके सोचते हैं कि यार क्या कौन से डिसीशन हमने ठीक नहीं लिए थे रास्ते में जिस वजह से हम यहाँ पहुँच गए, राइट? तो पर इट वॉज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। एक्चुअली क्या होता है जब इतनी आप टर्बुलेंस, इतने चैलेंजेस के थ्रू जाते हैं, एक उसमें एक बहुत पॉजिटिव निकल के आता है शरद, विच इज आपको समझ आता है आपके असली दोस्त कौन है।
क्या बात!
And actually, जो my strongest bonds have always been created out of the biggest adversities. Strongest bonds with people.
क्या बात है! गजब है भाई। भाई, today ये जो broadcast है, ये this audio would be consumed by a lot of our listeners who are bouncing back. Jobs chali gayi ya job cut ho gaya, personal setbacks hue. और कईयों के लिए ये सेटबैक बहुत नया होगा क्योंकि लाइफ बड़ी स्मूथ चलती आई एंड सडनली ये सब हो गया. तो आपकी क्या एडवाइस होगी क्योंकि आप तो अब पुराने खिलाड़ी हो गए वो बाउंस बैक के.
पता नहीं, मेरे को कभी कभी लगता है कि समटाइम्स मे बी इट वुड हैव बीन इजियर, आई वुड हैव डन फिगर्ड आउट अ वे टू डू अ जॉब एट माइक्रोसॉफ्ट एंड हैड अ वेरी सिंपल लाइफ. आई थिंक आई पिक्ड अ लाइफ ऑफ ग्रेट एडवेंचर एंड इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर. It has kept me interested, but see, I think, but I also understand adversity सबके life में होती है, अलग अलग किस्म की होती है. I think जैसा आपने ठीक कहा कि पिछला डेढ़ साल बहुत ही ज़्यादा adversity से भरा हुआ है, लोगों की personal lives में, professional lives में, businesses में, the second wave, right? So सबके, everyone has faced some adversity or the other. I don't think ऐसा कोई भी है. But what is so inspiring is कि like our country is bouncing back. ऐसा ये, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग भूल गए और ऐसा नहीं है कि वो scars नहीं रहेंगे. But हमें आगे भी बढ़ना है. And वो आगे बढ़ने के लिए एक optimism, एक positivity होना ज़रूरी है. क्योंकि अगर हम सिर्फ पीछे का सोचते रहेंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ऑन द पॉइंट ऑफ जॉब्स एटसेट्रा, आई डू फील दैट द फ्यूचर ऑफ इंडियाज इकॉनमी इज वेरी वेरी पॉजिटिव. इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू डू बिजनेस, बिल्ड अ बिजनेस, बी पार्ट ऑफ अ बिजनेस देन प्रॉब्ली एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. द इंडिया का गोल्डन पीरियड अगले 10-20-30 साल है. जो भी आज के दिन में इंडिया में, जो अगले 20-30 साल में वर्किंग पॉपुलेशन में होगा इंडिया, दे आर गोइंग टू सी अ गोल्डन एज इन इंडिया. एब्सोल्युटली गोल्डन एज, एंड आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड अबाउट दैट. एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स, क्योंकि वो स्टार्टअप्स रोज न्यूज में होते हैं, फंडिंग हो रही है, IPO हो रहा है. मैं सिर्फ स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो स्टार्टअप्स हमारी इकोनॉमी का बहुत छोटा पार्ट है, पर उनमें उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है टू इंस्पायर अदर्स. But even the non-startup part of the economy, I feel, has great potential. Every sector has great potential in our country. And yes, there has been a lot of challenges in many industries over the last year and a half. But all industries are bouncing back, and I expect them to bounce back even stronger going forward. Only and only because of the fact that we are a country of 1.3 billion aspirational people. Who are very diverse but very ambitious also. We want better for our subsequent generations. That is something that has never changed in our country, and the pandemic has also not changed that. We continue to be aspirational for our future generations. We want our future generations to do better than us, and because of that, we will all put in our 110% to bounce back out of this situation.
About that, Kunal. Bounce back,
Bharat. ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? इसके बारे में आप और इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और अपडेट्स चाहते हैं, तो रीच आउट कीजिए ना हमें. देखिए, फीवर FM ऑफिशियल इज आर हैंडल, और HT स्मार्टकास्ट, ये दो हैंडल हैं जो आपके काम के. हम FB पे हैं, इंस्टा पे हैं, ट्विटर पे हैं, यूट्यूब पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, क्लब हाउस पे हैं, हर जगह मौजूद हैं. तो मुलाकात होती है अगले एपिसोड में. और आप और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट अगर सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन टू htsmartcast.com और सुनिए नए नजरिए से. बाय बाय.
आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये था फीवर FM प्रोडक्शन HT Smartcast.